आज जाते हैं 9566 की वाणी चल रही थी, तीसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी कलयुग अंत में सोना बिल्कुल नहीं रहता और सतयुग आदि में फिर सोने के महल बनावेंगे। सोना अर्थात सच्चाई और महल कहा जाता है किले को। संगठन रूपी किला, जैसे स्थूल किला होता है तो उसमें स्थूल ईंटें लगाई जाती है, ऐसे ये आत्माओं का किला है। जो स्नेह के गारे या सीमेंट से जोड़ा जाता है और सच्ची सच्ची आत्मा रूपी ईंटें इसमें खड़ी की जाती है। ये वंडरफुल बात है। यहाँ हीरो का देखो कितना मान है, वहां तो हीरे पत्थर मिसल हो जाएंगे। मुसलमान भी यहाँ से लूट करके अपने मस्जिदों आदि में जाकर के लगाते हैं। कितने हीरे जवाहरात थे, अब तो बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है सागर भी रत्नों की झोली भर के ले जाते हैं। सागर से जितना चाहिए उतना ले लो, कहानियां ही भरतू हो जाती है। तुमने साक्षात्कार किया है, कितनी अंदर गुफाएं रहती है, टनों के टन ले जाते हैं। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हुई है, ले जाता हूं। अब ये तो साक्षात्कार की बात है, नीचे आया तो कुछ भी नहीं था। ऊंची स्टेज में होते हैं तो बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। बात तो सोने की ईंटों के महल बनावेंगे, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए जिससे खुशी का पारा चढ़े। बाप का परिचय देना कि शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, कब की बात है। यज्ञ के आदि में भी, शूटिंग पीरियड के आदि में शिव बाबा आया था और आकर के तुमको राजयोग सिखाया था। ये बात किसी को पता नहीं, माना बाप का प्रतिष्ठा वर्ष 76 में मनाया गया, तो जब प्रतिष्ठा रूपी जन्म ही नहीं हुआ तो आने का पता कैसे किसी को चले। यज्ञ के आदि में तो बीजारोपण किया, तो जो बीजारोपण का कार्य है सृष्टि निर्माण के कार्य में, वो पिता जाने और माता जाने। बच्चे तो जान नहीं सकते। तो किसी को पता नहीं था। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाया और कल्प कल्प तुमको ही सिखावेंगे। जो जो आकर के ब्राह्मण बनेंगे वो फिर देवता बनेंगे, विराट रूप भी बनाते हैं। उस विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। जो ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं अर्थात चोटी के ब्राह्मण बताए गए हैं, उनको गुम क्यों कर दिया है? जब चोटी के ब्राह्मण है तो उनको प्रत्यक्ष करना चाहिए। फिर भक्ति मार्ग में जो विष्णु का विराट रूप बनाते हैं उसमें चोटी को क्यों निकाल दिया? क्या कारण है? क्योंकि जो चोटी का पार्ट बजाने वाले ब्राह्मण थे वो यज्ञ के आदि की बात है, वो किसी को पता ही नहीं थी। जब कोई को पता ही नहीं है तो निकाल दिए। ब्राह्मण बहुत उत्तम कुल गाया जाता है, वो तो है जिस्मानी ब्राह्मण और तुम हो रूहानी। तुम रूहानी ब्राह्मण सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो, वो तो सत्यनारायण की कथा नाम रख देते हैं लेकिन कथा झूठी होती है। कथा माने बायोग्राफी, जीवन कहानी चौपड़ी पर लिख देते हैं सत्यनारायण की कथा, और अंदर जो सुनाते हैं पढ़ करके वो सत्यनारायण की सच्ची कथा तो होती नहीं। लीलावती कलावती की कथा सुनाते रहते हैं। अभी बाप आकर के तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा 84 जन्मों की सुनाते हैं। यही सत्यनारायण की अमर कथा है। माना जो सत्यनारायण है वही अमरनाथ है। अमर कहा ही जाता है देवताओं को, जिनकी इच्छा मृत्यु होने के कारण उनको अमर कहा जाता है। तुमको अमर कथा सुनाए, अमर बनाए रहे हैं। अभी ये मृत्यु लोग खत्म होना है। ये मृत्यु लोग सब का घड़ी घड़ी मृत्यु होता रहता है। एक होती है हद की मृत्यु और एक होती है बेहद की मृत्यु। बेहद की मृत्यु माने निश्चय बुद्धि से नीचे गिर जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाती है। बाप को भूले माना मृत्यु हो गई, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं। अनिश्चय बैठ जाता है तो जैसे कि निपूते हो गए। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको लेने आया हूं। कितनी ढेर आत्माएं होंगी जो जावेंगी? आत्मा जाती है कोई आवाज थोड़े ही होता है। जैसे मक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज देखो कितना होता है। रानी के पिछाड़ी جب مکھیاں بھاگتی ہیں تو دیکھو ان میں کتنی ایکتا ہوتی ہے. یہ ایکتا کی شکتی کیسے آتی ہے؟ پیورٹی سے ایکتا آتی ہے. جہاں پیورٹی ہوتی ہے وہیں یونٹی ہو سکتی ہے, اور جہاں امپیورٹی ہوتی ہے وہاں ڈس یونٹی ہوتی ہے. بھرمری کا مثال بھی یہاں کا ہے. بھرمری کیڑے کو پکڑ کر کے لے آتی ہے اور بھوں بھوں کی آواز کر کے اس کیڑے کو آپ سمان بنائی دیتی ہے. تم برہمنیاں بھی بھرمری ہو, بار بار وہی کانوں میں آواز گونجا کر کے تم آپ سمان بناتی ہو. تم منشی سے دیوتا بنائی دیتی ہو. آج کے منشی جیسے کیڑے مثل ہو پڑے ہیں. کیڑا دکھ دیتا ہے, گند کرتا ہے. باپ کہتے ہیں تم ایسے کیڑوں کو اڑنے لائق بنائی دیتی ہے. تم بھی اونچی اسٹیج میں اڑتی ہو تو تم خود بھی سکھدائی ہو اور سکھدائی بناتی بھی ہو. پتیتوں کو تم جان کی بھون بھون کرتی رہتی ہو. پاون بنائے وشو کا مالک بنائے دیتی ہو. تمہارا ہے پروتی مارگ, اس میں بھی میجورٹی ماتاؤں کی ہے, اس لیے بندے ماترم گایا جاتا ہے. باپ کہتے ہیں برہما کماری وہ جو 21 جنم کا ورسا دلاتی ہے. تو کتنی ایسی برہما کماری ہوں گی جو 21 جنم کا ورسا دلانے والی ہو؟ بیس جنم کا ورسا دلانا مانا اسلام دھرم میں کنورٹ ہونے والی برہما کماریاں ثابت ہونا. 19 جنم کا ورسا دلانا مانی بودھی دھرم میں کنورٹ ہونے والی برہما کماری ثابت ہونا. ایسے ہی جو اتر نیچے دھرم میں کنورٹ ہوتے جائیں گے وہ کم جنم پراپت کرتے جائیں گے. ان کو پکا برہمن نہیں کہیں گے. پکا برہمن سو پکا دیوتا, پکا دیوتا سو 84 جنم لینے والا ہوگا. پورے 84 جنم ہوں گے تو پرماتما باپ سے پورا 21 جنم کا ورسا لے گا اور دوسروں کو دلانے والا بنے گا. اور ورسا دلانے والا بنے گا بھی کس کے دوارا؟ خود بھی باپ دوارا ورسا لے گا اور دوسروں کو بھی باپ دوارا ورسا دلاوے گا. اگر خود ہی کسی دیہداری سے ورسا لینے والا ہوگا تو دوسروں کو بھی دیہداری سے ورسا دلانے والا بناوے گا. یہاں سنگم یوگ میں سب پرکار کی شوٹنگ ہو رہی ہے. ابراہیم سے پراپتی کرنے والے ہوں, इब्राहिम के आधारभूत से प्राप्ति करने वाले हो, इब्राहिम की बीज रूप आत्माओं से प्राप्ति करने वाले हो, वो सब कम जन प्राप्त करेंगे। बाप तो सदा सुख का वर्षा देते, कहा ही जाता है सदा सेव, सदा का सवाल है। पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा है वो सदा काल का सुख पाती है, सिर्फ आखिरी जन्म में जाकर के दुखी होती है। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, वो बनेंगे नवाब। राजा बनना अच्छा व नौकर बनना अच्छा, पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बनेंगे, फिर पछतावेंगे कि हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाप कहते हैं फॉलो करो, ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं, कोई कोई है ऐसे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एक कमरा दे देते हैं, मकान दे देते हैं सेंटर के लिए, लेकिन खुद मीट आदि खाते रहते हैं। वो पुण्यात्मा बनते जो उनके दिए हुए स्थान में रह करके पुरुषार्थ करते, वो पापात्मा बन पड़ते। तो पुरुषार्थ पर सारा मदार है। आश्रम मन खान पान अच्छा हो, रहन सहन अच्छा हो, आश्रम माना सादगी हो। जो अपने घर में स्वर्ग बनाते हैं तो वो खुद भी स्वर्ग में आवेंगे, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है ना। तो हमारा लक्ष्य है नरसिंह नारायण नारी से लक्ष्मी बनना, अपने घर को हम स्वर्ग बनावे, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनावे। ऐसे नहीं कि कोई दूसरा स्थान अलग खरीदे और उसमें सत्संग करे, नहीं। जिनके पास एक कमरा है उसी कमरे में खाना बनाए, उसी में सो जाए, उसी में झाड़ू पोछा करके क्लास लगाए। कौड़ी पाई का खर्चा किए बगैर तुम स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। सिर्फ आशीर्वाद पर ठहरने की यहाँ कोई बात नहीं है। बाप को याद करना है, वो है सुप्रीम बाप। सुप्रीम बनाकर ही साथ ले जावेंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता और बाप से जास्ती प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उनको कहा ही जाता है क्या, प्यार का सागर। गाते भी है तू प्यार का सागर है, फिर क्या कह देते हैं, तेरी बूंद के प्यासी हम। अरे जब सागर है तो सागर में समाना चाहिए या बूंद बूंद के लिए तरसना चाहिए। سمجھ نہیں سکتے ہیں تو تم بھی ایسے بنو جو ساگر میں سمائے جاتے ہیں وہ ساگر سمان بن جاتے ہیں. اگر کس کو دکھ دیا رنج کیا تو دکھ دینے والے دکھی ہو کر کے مریں گے. بابا یہ کوئی ساپ نہیں دیتے ہیں, یہ تو اصلیت بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں دوسروں کو سکھ دو اور دکھ نہ دو. سکھ دیں گے تو دکھی رہیں گے. سب کو پیار کرو, بابا بھی پیار کا ساگر ہے. اچھا ماں پتا باپ دادا کا میٹھی میٹھی سکل لے بچوں پر کی یاد پیار. گڈ مارننگ. روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے. اگلی وانی ہے 30-5-6 کی. ریکارڈ چلا بھولے ناتھ سے نرالا کوئی اور نہیں. بھولے ناتھ کے بچے ہی سن رہے ہیں. کس سے سن رہے ہیں؟ بھولے ناتھ سے. بھولا ناتھ شیو کوئی کہا جاتا ہے. ان کا نام ہے شیو. اس میں پرویش ہو کر کے بولا برہما کے تن میں. تو ان کا کیوں کہتے ہیں؟ برہما کے بازو میں ہی تو وہ بندی سپریم سول بیٹھی ہے, پھر ان کا نام شیو ہے ایسے کیوں کہا؟ ان کا کہنا چاہیے کیونکہ جو پارٹ شیو بولا بھنڈاری کے روپ میں سنسار میں پرتکش ہونے والا ہے, بھولے ناتھ کے روپ میں پرتکش ہونے والا ہے وہ بھوشیہ کی بات ہے. بھولے ناتھ کے بچے ارتھات شیو کے بچے, شیو کے بچے ارتھات بندو آتما کے بند روپ دھارن کرنے والے بچے, دیوان کی اسٹیج میں رہنے والے بچے نہیں, آتما روپی بچے انہیں کانوں سے سنتے. ابھی تم بچے آتما ابھیمانی بنے ہو, ٹیپ پر جو بچے مرلی سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں شیو بابا ہم کو اپنا پریچے دیتے ہیں کہ میں سبھی آتماؤں کا باپ ہوں. جس کو تم پرماتما پرم پتا یعنی پرماتما کہتے ہو ان کو سدے فادر ہی کہتے ہیں. کون کہتے ہیں کہ وہ فادر ہے؟ آتما ہی کہتی ہے. آتما کو اب گیان ملا ہے, اور کوئی منشیہ ماتر کو یہ گیان نہیں ہے. ہم آتما کو دو باپ ہیں, ایک ساکار باپ اور ایک نراکار. وہ پرم پتا ہے. کون؟ نراکار باپ پرم پتا ہے, مانے پتاؤں کے بیچ میں پرم ہے, سپریمیسی ہے, اس کا کوئی پتا نہیں ہے. اور پرم پتا کے بعد شبد لگتا ہے پرماتما, مانے جو آتماؤں کے بیچ میں پرم پارٹ دھاری آتما ہے, ہیرو پارٹ دھاری آتما ہے, اس میں وہ پرم پتا پرویش کرتا ہے. جو پرم پتا हीरो पाटधारी का भी बाप है। हीरो पाटधारी मनुष्य मात्र का बाप है, परंतु परमपिता का कोई बाप नहीं। ये समझानी और कोई नहीं दे सकता, बाप ही समझाते हैं। मुरली अक्षर सुनने से काठ की मुरली समझ लिया है, परंतु ये तो समझानी है। काठ की मुरली की बात नहीं है, कहते हैं ना कठबुद्धि पत्थर बुद्धि। काठ की मुरली माने जो कागज के पत्तों में सुनाई जाती है, ज्यों का त्यों पढ़ करके सुना देते हैं, उसका गुह्यता में कोई अर्थ नहीं निकलता, वो है काठ की मुरली। परंतु यह तो समझाने की बात है, जो भी मुरली के गुह्यार्थ हैं, उनकी गहराई को समझना है और समझाना है। और बाप के सिवाय कोई ये बातें बताए नहीं सकता। बाप पूछते हैं, तुम जो कहते हो परमपिता, परमात्मा, गॉडफादर, वो किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए? बाप पारलौकिक बाप के लिए? लौकिक बाप को गॉडफादर कहेंगे, हिंदी में भी अक्षर है परमपिता, वो तो एक ही निराकार है। ईश्वर प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता है। तो गॉडफादर अच्छा अच्छा है, आत्मा ने कहा वो हमारा गॉडफादर है। लौकिक बाप तो सिर्फ शरीर का बाप है। बाप समझाते हैं, बरोबर तुमको दो बाप हैं। कोई को कहो तुमको दो फादर है तो कहेंगे दो कैसे होंगे? हाँ, एक फादर और एक ग्रैंड फादर होता है ना। तो यहाँ भी तुम बच्चों का एक है फादर और एक है ग्रैंड फादर। ग्रैंडफादर कौन है? फादर है प्रजापिता और ग्रैंडफादर है जो हमारे मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसका भी बाप है। तो जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर, उनकी ही महिमा है। प्रजापिता की कोई महिमा नहीं है। प्रजापिता का टाइटल धारण करने वाले दादा लेखराज ब्रह्मा की भी कोई महिमा नहीं है। महिमा सारी उनकी है जो सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप है। ये अभी तुम समझते हो, सारी दुनिया में कोई ये बातें समझते नहीं। क्या बात है? इस दुनिया में सारी मनुष्य सृष्टि पतित है, पावन कोई है नहीं। पतित दुनिया में सब पतित है। उन सब पतित मनुष्यों को पावन बनाने वाला एक ही सुप्रीम सोल बाप आया हुआ है। बाप ने समझाया है, तुम्हारी पारलौकिक बाप से प्रीति है, औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या औरों की प्रीति बुद्धि नहीं है? प्रीति और विपरीत। प्रीति कैसे होती है? साकार से प्रीति होती है या निराकार से प्रीति होती है? प्रीति होना और विपरीत अर्थात वैर होना, ये साकार में होता है या निराकार में होता है? साकार में होता है। तो तुम्हारे सन्मुख आते हैं, सन्मुख आता है तो तुम्हारी होती है प्रीति बुद्धि, और जिनके सन्मुख है ही नहीं, निराकार को ही बाप समझे बैठे हैं, बिंदु को ही बाप समझे बैठे हैं, वो सब है विपरीत बुद्धि, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल में आए हुए बाप को पहचाना ही नहीं और तुमने पहचाना है। तो जो रचयिता को जानते हैं, मानते हैं, वो है प्रीति बुद्धि आस्तिक, और जो रचयिता और उसकी रचना को जानते ही नहीं वो है नास्तिक। तो औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का अभी समय है, ये संगम युग में ही विनाश भी होता है और स्थापना भी होती है नई दुनिया की, ये तो कोई भी जानते हैं। वही महावारी महाभारत लड़ाई लगती है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी। एरोप्लेन्स टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं, पैसे से जिसको चाहे वो देते रहते हैं, कोई कोई उधार पर भी लेते रहते हैं। तो प्लेन टैंक्स बारूद आदि सब खरीद करते हैं, ये चीजें बड़ी महंगी होती है, इन चीजों को विलायत वाले बनाते हैं। क्या जो एरोप्लेन है टैंक्स हैं, बड़ी महंगी चीजें हैं, उनको विलायत वाले बनाते हैं जो फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़े ही एरोप्लेन बना करके दूसरों को बेचते हैं। क्या बात हुई? ये तो हद की दुनिया की बात हो गई, इसमें बेहद की बात क्या है? एरोप्लेन आत्मा रूपी भी एरोप्लेन बन जाता है, जो ऊंची स्टेज में उड़ता है तो एरोप्लेन कहा जाता है, अगर नीची स्टेज है तो आत्मा को एरोप्लेन नहीं कहेंगे, और ऐसी ऊंची स्टेज सुप्रीम सोल बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो विदेशी का पार्ट बजाते हैं, और वो विदेशी बाप विदेशी बच्चों के साथ रह करके, डबल विदेशी बच्चों के साथ रह करके ऐसी आत्मिक स्थिति बनाते हैं जो ऊंची स्टेज का अनुभव करती है। तो बताया कि वो विदेशी विलायत वाले ही एरोप्लेन आदि बनाते रहते, बम्ब बनाते रहते हैं। बड़े से बड़ा बम्ब क्या है? परमात्म प्रत्यक्षता बम, एटम बम, उन्होंने एटम नाम दिया है कि है ये आत्मिक बम। वो आत्मा जो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है, हीरो पार्ट बजाता है, वो आत्मा संसार में प्रत्यक्ष हो जाती है। ये सब चीजें बाहर से आई हुई है। भारतवासी इन बातों को जानते नहीं है। क्या कहा, पाप की प्रत्यक्षता कौन करते हैं? भारतवासी करते हैं या विदेशी करते हैं? हैं? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं तो विलायत वाले प्रत्यक्ष करते हैं, भारतवासी तो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। बॉम्ब्स के लिए भी कहते हैं हम भेजेंगे, आप जो चीज खरीद करेंगे तो जरूर काम में लानी है, फेंकने के लिए थोड़े ही लेंगे, लड़ाई तो लगनी है। तो वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय। वो यादव संप्रदाय भी यूरोप में रहते हैं। और फिर भारतवासी है कौरव, भारत में रहते हैं कौरव और पांडव, और वो है यादव संप्रदाय। तुम्हारी बुद्धि में अब वो है यूरोपवासी यादव संप्रदाय, उसमें साब आ जाते हैं। साब अर्थात इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन, वो सारे ही यादव संप्रदाय हो जाते हैं। भारत तो अविनाशी खंड है क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थडे है, अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है, विदेशों में तो नहीं मनाते। कब से मनाई जाती है शिव जयंती? 76 से पहले भी मनाई जाती थी लेकिन छुट्टी नहीं होती थी। अभी 76 से जब से एडवांस एनालिसिस निकली, पाप का प्रत्यक्षता वर्ष प्रैक्टिकल में सिद्ध हुआ, तब से छुट्टी मनाई जाने लगी। रामनवमी की छुट्टी भी पहले नहीं होती थी, अभी इस वर्ष गवर्नमेंट ने रामनवमी की छुट्टी भी घोषित कर दी। शिवरात्रि रात्रि के 12 बजे मनाई जाती है, इसका मतलब विदेशियों में दिन की शुरुआत कब मानी जाती है? रात्रि के 12 बजे से, माने सन 76 में रात्रि के 12 बजे से। वास्तव में ज्ञान सूर्य उदय नहीं हुआ था भारतवासियों के मुताबिक, भारतवासी ज्ञान सूर्य का उदय तब मानते हैं जब सूर्य पूरब में उदय हो चुकता है। और विदेशियों का कहना यह है कि रात्रि के 12 बजे से ही सूर्य ऊपर आने लगता है, भले दिखाई नहीं देता है लेकिन वो ऊंची स्टेज में आने लगता है। है ज्ञान सूर्य की बात, ज्ञान सूर्य की आत्मा जो पार्टधारी है, परमात्मा का पार्ट बजाती है, वो 75 के बाद सन 76 से ऊंची स्टेज में जाना शुरू होती है। 76 तक होती है सतयुग की शूटिंग, तामसी शूटिंग, میلے ملاکڑوں والی شوٹنگ, جہاں میلوں میں میلہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو تامسی اسٹیج سے ساتوک اسٹیج میں آتما پرویش کرتی ہے اور باپ کا پرتکشتا ورش ودیشیوں کے دوارا منایا جاتا ہے. مانے ودیشی آتمائیں پہلے سمجھتی ہیں, سودیشی اگیان کی نیند میں سوئے پڑے رہتے ہیں, لیکن پوری پرتکشتا نہیں ہوتی. کرشن بچے کے دوارا پرتکشتا ہونا شروع ہوتی ہے, کیونکہ باپ کا کہنا ہے میں اکیلے پرتکش نہیں ہوتا ہوں, اکیلے جنم نہیں لیتا ہوں, میں بچوں کے ساتھ پرتکش ہوتا ہوں. تو بچوں میں پہلا بچہ کون؟ شری کرشن. تو کرشن والی سول کے دوارا پرم پتا پرماتما پہلے پرتکش ہوتا ہے, لیکن وہ بھی پرتکشتا پوری نہیں ہے. بھارت واسی تب بھی نہیں جگتے, خاص کر کے سکھ لوگوں کے لیے تو یہ مانتا ہے کہ جب دوپہر کے 12 بجتے ہیں تو ان کی عقل وشیش کھل جاتی ہے, کیونکہ بھارت واسی سکھ بھی ہے جیسے اور ہندو بھارت واسی ہے, ویسے سکھ بھی بھارت واسی ہے, اور سکھ تو بھارت واسیوں کے سدیو ہی متر رہے ہیں. تو دونوں مل کر کے جب پہچانتے ہیں تو پوری پرتکشتا ہو جاتی ہے, لیکن رام کی آتما کے دوارا ہوتی ہے. سوریہ رات دوپہر کے 12 بجے جب پورا چمکتا ہے, پوری روشنی دیتا ہے, چاروں اور اجالا ہو جاتا ہے, تب رام کا جنم مانا جاتا ہے. کرشن کا جنم راتری کے 12 بجے منائیں گے, شیو کی جینتی راتری کے 12 بجے منائیں گے, لیکن رام کی جینتی دوپہر کے 12 بجے منائی جاتی ہے. بھارت اویناشی کھنڈ ہے کیونکہ اویناشی باپ کا برتھ ڈے ہے. کیا جو 900,000 آتمائیں ہیں 84 جنم لینے والی, وہ اویناشی نہیں ہے؟ کیوں؟ 900,000 ستارے جو ہے وہ جو وناش ہوگا تو اس وناش کے ٹائم پر ساری دنیا میں گیان کی چمک نہیں ماریں گے, ماریں گے لیکن نمبر وار پرتکش ہوں گے, سب ایک ساتھ پرتکش ہونے والے نہیں ہیں. جو سدا کال چمکتا ہے, کبھی اندھیرے میں نہیں آتا ہے, جس کا اویناشی برتھ ڈے ہے, ایک دن بھی جس کا 84 کے چکر میں سے کم نہیں ہوتا ہے پارٹ, وہ ہے اویناشی باپ. باقی سب کا کچھ نہ کچھ وناش ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ سمے پرم دھام میں آتمائیں پڑی رہتی ہیں, بل پورے 84 جنم لیتی ہیں لیکن پورا 5,000 ورس اس سرشٹی پر قائم نہیں رہتے ہیں. تو اویناشی باپ کا یہ اویناشی برتھ ڈے ہے, اویناشی برتھ پلیس ہے بھارت. باپ آتے ہی تب ہیں جب پرانی دنیا ختم ہونی ہوتی ہے, اور جنم وہاں لیتے ہیں جو کھنڈ کبھی ختم نہیں ہوتا, तो दक्षिण भारत जो समुद्र के किनारे का इलाका है वो विनाश में खत्म हो जाएगा या रहेगा? वो खत्म हो जाएगा, इसलिए दक्षिण भारत को बोला है भारत का विदेश। और जो उत्तर भारत है खास करके यूपी, वो भगवान की जन्मभूमि मानी जाती है, वो है अविनाशी खंड, क्योंकि उस अविनाशी खंड से ही परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। तो जन्म वहां लेते हैं जो खंड कभी खत्म नहीं होना है। भारत में भी दक्षिण का हिस्सा खत्म हो जाता है और दूसरे दूसरे जो महाद्वीप है, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे एशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वो सब विनाशी धर्म खंड है। एक भारत का ही उत्तरी हिस्सा वो अविनाशी धर्म खंड होने के कारण वहां भारत की जन्मभूमि मानी जाती, वो परमात्मा की जन्मभूमि मानी जाती है। शिव जयंती भी वहां मनाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि शिव बाबा कब आता है। किनको? उत्तर भारत वालों को ये पता ही नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पता पड़ता है? कारण क्या है? क्योंकि जो विदेशी बच्चे हैं वो बाप को पहले पहचानते हैं, जो पहले पहचानते हैं वो ही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। 76 में एडवांस ज्ञान की शुरुआत हुई, बेहद के बाप ने आकर के बेहद की नॉलेज दी। पहले समझा किसने? उत्तर भारत वालों ने या दक्षिण भारत वालों ने? दक्षिण भारत वालों ने पहले समझा। तो समझदार कौन हुए? विलायती कौन हुए? दक्षिण भारत के विलायती हुए। वो आत्मिक स्थिति पहले बनाई लेते हैं। भारतवासी कुमकर्ण की नींद में सोते रहते हैं, अभी भी सोई पड़े, अभी भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म का वो टाइम नहीं आया है जो दुनिया में आवाज फैली हो कि बाप सुप्रीम सोल आया हुआ है। तो आते उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां होती है। अब बाप समझाते हैं वो ही यूरोपवासी यादव संप्रदाय है, बुद्ध है, क्रिश्चियन आदि, ये सब यादववासी है, यूरोपवासी है यादव। अब बाप कहते हैं उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, एक व्यापी नहीं समझ पाते। अगर एक व्यापी पक्का निश्चय बुद्धि में धारण करके रखे तो मनुष्य मत पर या मन मत पर कभी नहीं चलेंगे। तुम हो विनाश काले प्रीति बुद्धि, तुम बाप को जानते हो। अभी बाप कहते हैं तुम पाप आत्मा बन गए हो, अभी मेरी याद से तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। क्या कहा? किसकी याद से पुण्यात्मा बनेंगे? मेरी याद से। ये मेरी याद से पुण्यात्मा बनेंगे, जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। सुप्रीम सोल को याद करने वाले जो सिर्फ सुप्रीम सोल को याद करते हैं वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, पाप आत्मा बनते हैं, द्वैतवादी द्वापर युग से जाकर के जन्म लेते हैं, सत्युग त्रेता रूपी स्वर्ग में जन्म नहीं लेते, देवता नहीं बनते, पुण्य आत्मा नहीं बनते, और तुम पुण्य आत्मा बनते हो। क्यों क्यों पुण्य आत्मा बनते हो? क्योंकि तुम साकार बाप को याद करते हो। जो साकार बाप है वो देवताओं में महादेव कहा जाता है, देव देव महादेव। तो तुम ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करते हो। देवता कहो अथवा पुण्यात्मा कहो, दूसरा कोई ऐसे कह न सके। तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए, 84 जन्मों में पापात्मा तमो प्रधान बन गए। भारतवासियों ने 84 जन्म लिए, अभी नाटक पूरा होता है। अभी सभी को वापस जाना है, चाहे कोई ने 84 जन्म लिए हो अथवा कम जन्म लिए हो। तुमको बाप अभी राजयोग सिखाए रहे हैं। ये है सबका कयामत का समय, अर्थात मौत का टाइम है। बेचारे सर्वव्यापी कह देते हैं, इसलिए विनाशकाली विपरीत बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा? अभी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में विनाशकाली विपरीत बुद्धि कौन है? बेसिक वाले। क्यों? वो तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए अगर सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? वो एक व्यापी तो बताओ। तो कोई दादी को बतावेगा, कोई गुलजार दादी को बतावेगा, कोई किसी बड़े महारथी को बतावेगा। जो जिससे दृष्टि लेते हैं, कृपा दृष्टि लेते रहते हैं, उसी को समझ लेते हैं। क्योंकि जो जिस धर्म में कन्वर्ट होने वाला होगा वो उसी की बात मानेगा, उसी को इस विश्व का सर्वोपरि व्यक्ति मानेगा। बाप कहते हैं ये सब है विनाशकाली विपरीत बुद्धि, क्योंकि मेरे को सर्वव्यापी समझ लेते हैं। मैं तो सर्वव्यापी होकर के नहीं प्रत्यक्ष होता हूँ, मैं तो एक मुकर्र रथ में सृष्टि पर आकर के प्रत्यक्ष होता हूँ। तो जो सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, वो है रचयिता, और बाकी सब है रचना। रचना से वर्षा मिल नहीं सकता। 35-66 की वाणी का दूसरा पेज। कोई को भाई से वर्षा थोड़ा ही मिलता है, वर्षा मिलता है बाप से। तो दो बाप हैं, ये अच्छी रीति समझाया जाता है। अभी तुम समझते हो श्रीमत पर जीत पहनेंगे, उनकी होगी विनाशकाले प्रीति बुद्धि, और जो श्रीमत के विपरीत चलने वाले हैं उनकी विपरीत बुद्धि होने के कारण विनाश को प्राप्ति होगी। तुम्हारी तो प्रीति बुद्धि है, इसमें भी जो तीव्र गति वाले हैं, तीव्र प्रीति वाले हैं, वो बाप से प्रीति बुद्धि पूरे बनते हैं, और तो कोई की प्रीति होती नहीं है। ہم بابا سے 31 جنم سورگ کا ورثہ لیتے ہیں تو اب بابا ہی ہم کو ستیہ بناتے ہیں اور کوئی سے پریتی نہیں رکھنی ہے جو ہم کو جھوٹے سے سچا بناتے ہیں انہیں سے پریتی رکھنی ہے جب نیا مکان بناتے ہیں تو نئے مکان سے پریتی لگ جاتی ہے ابھی کون سا ٹائم چل رہا ہے ابھی نیا مکان بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے نیا مکان بن رہا ہے تو بچے جو ہوں گے جو پریتی بدھی بچے ہوں گے ان کی اس نئے مکان سے پریتی لگ رہی ہوگی پریتی جٹ رہی ہوگی بار بار بدھی اس طرف جائے گی اور جو وپریت بدھی ہوں گے وہ اپنے ہی اہنکار میں چور رہیں گے جیسے بھکتی مارگ والے کہتے ہیں کہ رشی کیس میں سورگ آشرم ہے تو برہما کمار کماری کیا سمجھتے ہیں کہ ماؤنٹ آبو میں سکھ دھام اور شانتی دھام ہے اس کے علاوہ کوئی نیا سنگٹھن روپی مکان ہو نہیں سکتا باپ کہتے ہیں جب نیا مکان بنے گا تب پرانا مکان دست ہوگا تمہارا ادیوگ نئے مکان میں لگ جانا چاہیے کیونکہ تمہاری پریت بدھی ہے تم باپ سے 21 جنم کا ورثہ لیتے ہو وہ بابا ہی ہم کو ستیہ بناتے ہیں اس باپ کے سوائے اور کوئی سی پریتی نہیں رکھنی ہے سمجھا جاتا ہے پرانا مکان ابھی ٹوٹنے والا ہے تو ہم اس پرانے مکان سے پریتی توڑتے جاتے ہیں دل کو ہٹاتے جاتے ہیں باپ سمجھاتے ہیں دن پرتی دن وایو منڈل بہت خراب ہوتا جائے گا دیکھتے بھی وہ کتنے ہنگامے ہوتے ہیں تو سمجھیں گے بس ابھی یہ خلاص ہوتا ہے ابھی ہم کو جانا ہے نئی دنیا میں نئی دنیا ارتھات نیا سنگٹھن نئی دنیا کو یاد کرنا پڑے کیا یاد کرنا پڑے پڑے مانا بھلے کوئی نہ بھی کرنا چاہتا ہو تو بھی یاد کرنا پڑے بے حد کے باپ اور ورثے کو یاد کرنا ہے اور کوئی کو یاد کرنے سے کچھ ملے گا ہی نہیں منوشی بھکتی مارگ میں بہتوں کو یاد کرتے ہیں ماں باپ مت سمبندیوں کو یاد کرتے ہوئے بھی پھر دیوی دیوتاؤں کو دیکھو کتنا یاد کرتے ہیں باپ کہتے ہیں اب یہ سونے کی زنجیریں توڑو کیا دیوتاؤں کو یاد کرنے سے کچھ پراپتی ہونے والی نہیں ہے اور ایک باپ کو ہی یاد کرنے سے تم نئی دنیا میں چلے جاؤ گے اوم شانتی